This is a podcast for Radio Sangam, the number one followed Asian community radio station in the UK.
Hamare pyare pyare listeners, janab, aap sun rahe 107.9 FM. Jaise maine aap sab ke saath wada kiya tha ke meri kya puri duniya ki favorite legendary actress Bhushan Ansari ji hamare saath hain. She is a comedian, singer, playwright. उन्होंने बहुत सारे काम किया है, बहुत ही प्यारा काम किया है. शी इज रियली, उन बचपन से उन्होंने स्टार्ट कर दिया था काम और उनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं. बहुत ही प्यारा काम करती हैं. एंड शी इज विद अस राइट नाउ इन द ब्रेकफास्ट शो. गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम आपा.
वालेकुम अस्सलाम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू.
कैसी हैं आप?
मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का बहुत शुक्र है. आई एम फाइन
एंड थैंक यू सो मच आपा कि आपने वक्त निकाला हमारे शो के लिए. बहुत शुक्रिया आपका.
अपने सुनने वालों के लिए वक्त निकालना ही पड़ता है कभी कभी.
और मैंने जब रात को अनाउंस किया कि बुशरा आपा आ रही है हमारे शो में, तो बुशरा आपा मेरे पास इतने ढेर सारे सवाल आते, इतने प्यारे प्यारे सवाल आते, लेकिन उन सवालों को करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके बचपन के बारे में. आपका बचपन कहां पे पैदा हुई, कहां पे बड़ी हुई, प्लीज कुछ बताएं ना हमें, हमारे जितने भी लिसनर्स हैं उनको.
मैं कराची में पैदा हुई थी और फिर मैं 7 साल की उम्र में लाहौर चली गई थी. I was brought up in Lahore and then after doing my intermediate in Lahore College, हम इस्लामाबाद चले गए थे. My father got posted over there and then I did my graduation in Islamabad and got married. And then after a year, then I came back to Karachi. और अब पिछले तकरीबन 35-37 years से मैं कराची में.
So, Bushra, have you always wanted to go into acting?
Yeah, actually, I have a very rich background as far as performing arts are concerned. Mm-hmm. My father studied filmmaking from Hollywood when I was 3 years old.
Very cool.
Wow. He came back and he made his own film, which was a big flop because it was an experimental, different type of a film. Uh-huh. It's for no, it was not a commercial film. Mm-hmm. And after that, hum sab ka ye tha ki we all could sing because meri ammi ki awaaz achhi thi. वैसे तो कोई सिंगर फैमिली से नहीं थी, बट शी वॉज आई मीन कल्ला की आवाज भी थी, मेरे नाना की आवाज अच्छी थी. माई फादर kept an उस्ताद फॉर हर, जो फिर उन्होंने सिखाया क्लासिकल. देन माई मदर सिर्फ ओनली सैंग 2 songs इन माई फादर फिल्म, फिर नहीं गाती थी. वो चीजें सारी हमारे अराउंड हो रही थी, तो हमें मुझे लगता था कि मैं तो सिंगर ही हूँ बस. मुझे तब पता, मैं समझ रही थी कि मैं तो गाई लूंगी, मेरा क्या है, मैं तो गाई लेती हूँ. I thought singing is something which is like eating and sleeping. तो music इतना ज्यादा था हमारे घर में. And literature, because मेरे father बहुत बड़े intellectual थे, journalist थे. और वो film तो उन्होंने एक बार ही बनाई थी, but overall वैसे generally हमारी family में लिखना पढ़ना बहुत था. किताबें हैं मेरे father की, मेरे दादा की, मेरी फूफी की, मेरी बड़ी बहन नीलम की. So उस तरह से music और ये culture और literature ये सारा आस पास था, तो हम बहुत rich लोग थे इस हवाले से.
Amazing.
That's amazing, Bushra. That's amazing to know कि आप कितना involved थे इस चीजों में. और क्या मुश्किल था, क्या challenges थे जब आप इन चीजों से सीख रही थी, क्या challenges आपने face किए?
नहीं, challenges तो actually इस तरह से थे नहीं, because एक तो उस वक्त उस जमाने में और फिर family में कोई इसमें allowed नहीं था ना, इस तरह से आप चले जाए और singer ही बन जाए. But I was 9 years old when I asked my mom to take me to TV station. एंड वहाँ बच्चों के प्रोग्राम में आई वॉन्टेड टू सिंग. सो जैसे ही मैं गई वहां, तो उन्होंने मुझे रख लिया. मैं तो बहुत पटाखा सा बच्चा थी, मुझे गाना भी आता था बच्चों के हवाले से बहुत. एंड आई स्टार्टेड सिंगिंग एंड डूइंग परफॉर्मिंग एज एज अ फेरी और कोई डिफरेंट कैरेक्टर्स के साथ गाती थी. हाँ, तो मैं उस वक्त बड़ी पॉपुलर बच्चा होती थी. इट वॉज अबाउट आई थिंक 68 की बात है. तो फिर उसके बाद बीच में यू व्हेन आई वाज इन क्लास 7, तो माय ग्रैंड पेरेंट्स, मेरे दादा दादी ने कहा भाई मैं टीवी पे नहीं जाना, ये क्या है. और मतलब आपको पता सब टेबूज ऐसे थे कि और पढ़ाई है और फलाना, और बस हूं वड्डी हो गई, हूं बस कर दे, हूं छोड़ दे टीवी पे. नहीं, अब्बा तो चलो ये तो छोटी है चली जाएगी, मुझसे 2 बड़ी भी थी, उन बेचारों को तो मिली नहीं इजाजत. तो जब जरा मैं बड़ी थी उन्होंने रोक दिया. देन माई फादर से ठीक है, तुम्हें बहुत शौक है गाने का, तो तुम चुपके से जाके रेडियो पे गा लिया करो ना, किसी को पता ही नहीं चलेगा दादा दादी को, और तुम्हारा दिल बहल जाएगा. तो मेरे फादर इसको बिल्कुल बुरा नहीं समझते थे, बस वही बात है आपको बताया कि उस जमाने में हालात ऐसे थे कि नहीं नहीं फिल्में और ये
होते थे उस वक्त,
स्ट्रिक्ट भी बहुत थे, तो उसमें था कि नहीं लोगों का पता नहीं होता फिर कौन आपको शेपरॉन करेगा। एक दो चार दफा मेरी अम्मी मेरे साथ गई, उन्होंने कहा नहीं मेरे से नहीं होती ये ड्यूटी की, मैं लेके जाऊं और मैं छोड़ने जाऊं, मैं मेरे पास बड़े काम है। सो एक करियर नहीं था इसका, कोई प्लान नहीं, पढ़ाई करो बस, चलो शादियां करो अपने घर, ऐसी बातें थी। तो मैं फिर क्लास सेवन एट्थ में मैं चली जाती थी चुपके से रेडियो स्टेशन। माई फादर एक्चुअली टोल्ड मी कि तुम चले जाओ और वहां जाके गा लिया करो, तुमने गाना ही है ना तो मजा ले लिया करो, जाके चलो। मैं जाके बैठ जाती थी उस्ताद फतेह अली खान के पास, वो जो अमानत अली खान और जो शफकत के चाचा है ना, बड़े वाले उस्ताद खान साहब, और मुझे क्लासिकल का तो पता ही था, मेरे घर में बहुत होता था, मेरे फादर बहुत गाना सुनते थे और हमारे घर में म्यूजिक ही पक्का सुना जाता था। तो मैं वहां बैठ जाती थी, उनसे रट्टे मार लेती थी, कोई राग वाग सिखा देते थे, कभी कुछ कोई गीत करा लेते थे, तो मेरे अपने दिल को जरा एक तसल्ली रहती थी। आई थॉट दैट आई कैन बी अ सिंगर, आप वो जाना और बात होती है, और फिर प्रोफेशनली जब आप बाहर निकलते तो आपको पता चलता है कि दुनिया में तो नूरजहां है, महनाज है, निगरा है, प्रॉपरली सीखा है जो गाने को, तो वो तो मैंने सीखा ही नहीं घर में, गाने तो गाना सीखने की इजाजत थोड़ी थी कोई, बस उन्होंने कहा चलो हंसी हंसी गा लो। फिर हमारा लेनी में शादी हो गई, तो फिर हस्बैंड जो थे वो इसी फील्ड में थे, डायरेक्टर थे, तो फिर उन्होंने ड्रामा शुरू उनके साथ कर लिया। ड्रामे की बात होती थी, मैं जब बिल्कुल यंग थी 15 साल की 16 साल की, लाहौर टीवी से हर वक्त लोग मेरे घर आके मेरे फादर से मेरी अम्मी से रिक्वेस्ट करते थे, वो कहते थे प्लीज सॉरी हमें बॉदर न करें, हम अलाउ नहीं कर सकते। मेरे फादर को जरा था कि नहीं भाई मैं ड्रामो में नहीं मैं भेज सकता, इसमें रात को देर हो जाती है फलाना है। तो शादी हुई तो चूंकि हस्बैंड वाज इन द सेम फील्ड सो आई कुड डू ड्रामा एनीथिंग, देन पीपल ड्रैग मी इन 50-50 एंड शोशा एंड ऑल दैट, तो फिर बस एक सिलसिला शुरू हो गया अल्लाह के फजल से।
आपा एक और क्वेश्चन क्या आपको पता है, मेरे दिल में एक चीज रह गई है कि मैं जिंदगी में आपसे मिलना चाहता, मेरी बड़े दिल की ख्वाहिश है ये नहीं कि आप मेरे सामने या बात कर रही है, मैं आपसे ये कह रहा हूँ आपसे और मोइन अख्तर साहब से मैं मिलना चाहता था। अल्लाह सुभान व तआला उनको जन्नत और फिर आला मकाम अता फरमाए, आला बागों में से बाग उनको अता फरमाए। आपने उनके साथ काम किया, आपका कैसा एक्सपीरियंस, आप मोइन अख्तर साहब के बारे में थोड़ा सा कुछ आप बताना पसंद करेंगी प्लीज?
बस पसंद क्या करूंगी, मैं तो उसका नाम लेते ही बात ऐसी दिल को एक धक्का सा लगता है कि
ग्रेट लॉस टू आवर पाकिस्तानी।
जाके भी नहीं जाते ऐसे लोग क्योंकि लोगों के दिल में रहते हैं और उसका काम रहता है, और फिर बहरहाल जाना तो सभी को होता है, पता नहीं हर बंदे को ये लगता है कि जब उनका कोई बहुत प्यारा चला जाता है तो लगता है कि हाय वो तो बहुत ही जल्दी चला गया, ये तो अल्लाह को पता है कि कब किसको बुलाना है।
जी जी।
हमें भी बुलाएंगे अल्लाह मियां, औरों को भी बुलाएंगे, लाइन में सभी लगे हुए हैं। बट ही वाज बस ही वाज वेरी डियर टू मी, और हमारा टेलीविजन पे तो जो साथ रहा सो रहा, हमने
अमेजिंग केमिस्ट्री विद हिम। और प्लीज वो जो आपने बिजली का करेक्टर किया था, और रियली आई वॉज वॉचिंग योर क्लिप्स एंड एवरीथिंग, मैंने पहले भी देखे, लेकिन मोइन अख्तर साहब जैसे आपसे सवाल कर रहे थे और जैसे आप उनको जवाब दे रही थी, रियली आई लाइक, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हो गया था वेन आई एक्चुअली वॉच्ड हिज ड्रामा, इट वॉज कॉल्ड सचमुच एंड इट वॉज अमेजिंग, और मेरे दिल में रह गया कि बस मैं उनसे मिल नहीं पाया जिंदगी में। सच्ची में ये एक ख्वाहिश है जो मेरे दिल में थी, और एक और ख्वाहिश को मैंने आपके साथ मिलना है जिंदगी में इंशाल्लाह, कोशिश तो मैंने करनी है जरूर इंशाल्लाह, कभी भी पाकिस्तान आया। और आपने अनवर मकसूद साहब के साथ लूज टॉक किया था, आप प्लीज अगर एक और बहुत ही बड़ा नाम है हमारा इंडस्ट्री का,
कॉल इन और मैसेज इन विद योर questions to answer them. Thank you Ijaz Lahore for your call. These things happen. It looks like she's actually back with us.
Hello.
मैं सोई 5 बजे थी तभी तो मेरी आवाज ही नहीं तक निकल रही, और 5 बजे सो के तो मैं उठी हूँ कोई पाकिस्तानी पौने 12, और एकदम से उठी कि आपका फोन आना था। अब उसने वो फोन मुझे कर रही थी कि इधर आ जाए बच्चे जो छलांगे मार रहे हैं, और कह रहे हैं अम्मा अम्मा, मैंने कहा अच्छा भाई मेरे मैंने कहा बस मैं 1 बजे आती हूँ, मैंने कहा लेट मी फिनिश माय इंटरव्यू देन आई विल कम, बिकॉज वो नेबर में रहते हैं मेरे।
मैं पूछ रहा था आपसे कि हमारे एक और बहुत ही बड़ा नाम है इंडस्ट्री का अनवर मकसूद साहब, आपने उनके साथ भी काम किया, कैसा?
जी जी, अनवर साहब के साथ बहुत रहा मेरा वक्त अच्छा गुजरा, और मेरा अनवर साहब का, मोइन अख्तर का एक बड़ा अच्छा ट्रायो बना रहा।
जी जी।
द काइंड ऑफ कॉमेडी ही राइट्स, उसमें एक फिनिश होता है, एक सैटायर होता है, एक क्लास का जुमला होता है. सो दैट वॉज द कॉमेडी एक्चुअली विच सूटेड मी एंड आई कुड डू इट. अदरवाइज आपने मुझे कभी नहीं देखा होगा कोई सिट कॉम करते हुए, कोई ऐसी भागने वाले ड्रामे बकवास मैंने नहीं कभी किए. सो आई ओनली डिड आई थिंक आफ्टर फारूक कैसर्स हैगा सरगम वाला जो मेरा बचपन में मैं करती थी, उसमें मैं शर्मिली बनती थी, ये वो जो इस्लामाबाद से होता था. उसके बाद उनके ह्यूमर के बाद ऑलमोस्ट अबाउट 40 years मैंने अनवर मकसूद साहब का लिखा हुआ ह्यूमर किया है. उसके बाद सिर्फ अगर आप देखें तो सिर्फ उनसे हटके अगर मैंने किया है तो वो साइमा चौधरी वाला कैरेक्टर जो मैंने बनाया जी. अगर आपने देखा हो बारात सीरीज में डोली की बारात तो उस मेरे और मैं उन्हीं के टाइप का काम करती थी. तो मोइन अख्तर कई दफा उनसे कहता था, वो जरा उनसे ज्यादा फ्रेंकली बात करता था कि बात सुनो अगर हम ना होते तो तुम क्या करते, मैं और बुशरा ना होते तो वो कहते अगर मैं ना लिखता तो तुम दोनों क्या करते. तो हम लोग बड़ा हंसते थे आपस में. उनके कुछ बड़ा अच्छा रहा और उन्होंने बड़ा कुछ सिखाया. उन्होंने ही एक्चुअली आई लर्न अ लॉट फ्रॉम हिम. बहुत सी बातें, बहुत से लव्स, बहुत से कहना चाहिए कि कुछ रिवायात, कुछ तहजीब, उठने बैठने की बात करने की सलीका, ये सब मैंने बहुत सारी चीजें अनवर साहब से सीखी. फिर उन्होंने मुझे बहुत अच्छे तोहफे दिए जिसमें लॉट ऑफ बुक्स आई गॉट फ्रॉम लिटरेचर अनवर साहब गेव मी. अनवर साहब ने मुझे पेंटिंग दी, अनवर साहब ने मुझे दुनिया का सबसे अच्छा म्यूजिक दिया. उनके पास बहुत कलेक्शन है क्लासिकल म्यूजिक का भी और वेस्टर्न ईस्टर्न म्यूजिक का. तो उन्होंने सारी आई थिंक मैंने बाजार से दुकान से कैसेट कभी खरीदी ही नहीं, मुझे नहीं पता क्योंकि मैं हर गाना नहीं सुन सकती ना, मेरी भी बड़ी प्रॉब्लम है. तो वो तो मुझसे भी कहीं आगे की चीज है, तो सिवाय बहुत ज्यादा शदीद क्लासिकल के वो बहुत कम सुनते हैं, लेकिन वो दूसरे भी सुन लेते हैं, लता के या मैडम के गजलें भी सुन लेते हैं. मेरे फादर तो बिल्कुल नहीं सुनते थे ना कोई गजल गाना कुछ नहीं, वो सिर्फ क्लासिकल राग सुनते थे. तो अनवर साहब ने मुझे मैक्सिमम अच्छा म्यूजिक सुनाया, मुझे कैसेट्स दी, उस जमाने में कैसेट्स थी ना. और फिर उसके बाद जो मुझे मैं कहती थी फलां फिल्म का गाना मुझे चाहिए, चाहे वो लाहौर का पाकिस्तानी फिल्मी का पंजाबी फिल्म का होता, चाहे वो इंडिया के किसी मेरी नानी के बचपन का होता, उनके पास सब कुछ था. सो एक बहुत बड़ा खजाना उनके साथ तो मिला मुझे म्यूजिक का, और फिर पेंटिंग्स, और फिर दुनिया जहान के शायरों की किताबें. तो बातचीत का तरीका एक बहुत बहुत अच्छा मेरा उनका वो साथ रहा. तो हमारा तीनों का बड़ा, और फिर जाहिर है उनके साथ काम करना, उनके जुमले बोलना. अभी भी मैं बाहर जाती हूँ, करती हूँ फंड रेज करती हूँ लोगों के हॉस्पिटल्स वगैरह के. तो कई जगह बैठ के मैं उनकी बड़ी चीजें सुनाती हूँ लोगों को, बड़ा मजा आता है.
बुशरा आपा, मैं जल्दी जल्दी से थोड़ा सा और आगे आ जाते, 2016 और 18 में आते. आपने ड्रामा किया था और डायरी एंड बेदर्दी, टू एक्सट्रीमली सेंसिटिव टॉपिक्स. एंड मैं बहुत ही फखर के साथ कहता हूँ कि ये बात के आई एम सो हैप्पी कि आवर इंडस्ट्री इज नाउ टेकिंग सो मच रियल टॉपिक्स. एंड आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा और डायरी और बेदर्दी का, प्लीज कुछ शेयर करना चाहेंगी आप?
लेकिन जब आप हम कुछ कर रहे होते हैं ना, कोई काम जी, जो कोई प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं
जी, जी
वो एक्साइट तो करता है
जी जी.
और मोस्ट ऑफ द टाइम आई ट्राई टू डू द थिंग्स व्हिच कैन एक्साइट मी नाउ, बिकॉज आई डोंट हैव टू प्रूव एनीथिंग कि मैं अब ये कर लूं. तो मैं अल्लाह के फजल से जो कर सकती थी कर लिया
जी, जी.
मुझे अब कुछ ऐसा करना होता है जिसमें मुझे एक्साइटमेंट हो ताकि वो आपको भी अच्छा लगे.
ऑफ कोर्स, और मैसेज इसमें इतना बड़ा
मैसेज होता है. तो अब उडारी जो था वो एक तो कैरेक्टर ऐसा था जिसमें मुझे परफॉर्म करने का मजा आ रहा था. वो म्यूजिकल औरत थी, और म्यूजिकल चीज जहां पे भी होती है ड्रामे में जब वो मिक्सअप होती है तो उसकी कोई और एक डिमेंशन होती है जो मुझे ये पता होता है कि मेरे अलावा ये कोई नहीं कर सकता. बिकॉज दोनों चीजें साथ साथ लेके सब लोग नहीं कर सकते. बहुत से एक्टर्स हैं, बहुत बड़े बड़े एक्टर्स हैं, मेरे दोस्त भी हैं, मगर जब कहीं म्यूजिकल चीज आती है तो फिर वो कहते हैं भाई तुम ही कर लो. तो वो बड़ा मुझे एक नॉवल्टी लगती है कि अल्लाह ने मुझे एक मेहरबानी की है कि मैं चलो मैं कोई बहुत बड़ी सिंगर तो नहीं हूँ, लेकिन एटलीस्ट मैं एक एक्टर सिंगर हूँ. तो उससे मुझे दोनों बेनिफिट्स होते हैं, और मैं ऐसे किसी कैरेक्टर को करने में ज्यादा पावरफुल कर सकती हूँ अपने आप.
आपसे एक क्वेश्चन है कि आपने पता सराकी में वो था, आपको सराकी आती है? आप तो कह रही कि लाहौर में थी और फिर
एक्चुअली मेरी अम्मी जो है ना वो मुल्तान में ब्रॉट अप हुई. मेरी नानी नाना वहाँ 40 years रहे.
ओके.
तो मैं छुट्टियों में नाना नानी के पास जाती थी जब छोटी थी स्कूल टाइम में. तो वहाँ नाना नानी की तकलीफ भी बहुत मिलती है बच्चे को, और नाना नानी बहुत अटैच भी थे मुझसे. तो मैं दो महीने की गर्मियों में सड़ी हुई गर्मियों में वहीं मरने जाती थी गर्मी में.
लेकिन यू नो
मेरी बहन हाय इसको देखो गर्मी में मरने जा रही है, इसको वहां पे मच्छर काटेंगे, ये पता नहीं गर्मी में धक्के खाए. मैंने कहा मैं तो अम्मा जी के अम्मी जान के अब्बा जान के पास रहना है क्योंकि वो मुझे तो वहां मैं उनके वो मेरे नाना थे स्टेशन मास्टर थे रेलवे में. अच्छा. उनके पास जो आते थे ना एम्प्लॉयज या उनके स्टाफ में कुली वुली ये वो तो वो सराइकी बोलते थे सब.
ओके.
और वैसे भी अराउंड सराउंडिंग में लोग सराइकी बोलते तो मेरे अंदर ये पिकअप है. मैं पर्शियन में गा सकती हूँ, मैं बंगला में गा सकती हूँ,
हिंदी
गाती हूँ मैं, मतलब पंजाबी तो गाती ही हूँ लेकिन मेरे मुझे ये है पिकअप मेरे अंदर
यार.
तो मुझे मैं उनके साथ मुझे ना बातें करती थी सराइकी में, वो आते थे ना उनका कुली या उनका कोई वहां से दफ्तर से लोग तो मैं उनसे कह गया तुम केक रेंदे पे हो, मुझको अच्छा लगता था वो. एग्जैक्टली. तो मुझे भूल गया इतनी नहीं आती है, अम्मी को फर आती है, अम्मी तो स्कूल वगैरह में भी गई थी. लेकिन मैंने मेरे पास वो टोन है. इसी तरह यहाँ रही हूँ, मेरे पास सिंधी नौकरानी थी एक, तो सिंधी का टोन भी सिमिलर है काफी. सिंधी मुझे समझ में सारी आती है और फिर सिंधी मुझे अच्छी भी लगती है. शफी मोहम्मद शाह हमारा दोस्त प्यारा सा, वो भी सिंधी था. कभी कभी वो कहता था कि एक सिंधी ड्रामा करो, मैं कहती थी अरे तुम्हें बड़ा सर खपाना पड़ेगा, मेरा दिल बहुत चाहता था मैं सिंधी ड्रामा करूँ ऐसे ही अपने मजे के लिए कि मैं एक सिंधी ड्रामा में भी बोल सकी हूँ. सो ये पिकअप था मेरे अंदर. सो मुझे लगा कि मैं इसका टोन अगर पंजाबी बनाऊ आई शुड नॉट लुक साइमा चौधरी, आई शुड नॉट लुक बिल्किस कौर, बिकॉज वो मैंने सिखनी बनी थी मैं, जिसने सिखने वाली पंजाबी बोली थी, बिल्किस कौर बनी थी मैं एक प्ले में. सो अपने काम से भी तो बचना होता है ना कि मैंने क्या किया, मैं इस जैसा एक और ना करूं, मैं कुछ डिफरेंट करूं. वो फिर मैंने बिल्किस कौर और साइमा चौधरी की पंजाबी से हट के सोचा कि चलो इसको जरा सा सराइकी टोन दे देते हैं.
एंड बेदर्दी पे आते हैं, आई लव्ड दैट ड्रामा. आई थिंक बहुत बड़ा मैसेज, एक्सट्रीमली बिग मैसेज. और मुझे लगता है कि पाकिस्तान ड्रामा अभी आ रहा है उस तरफ की, यू नो लाइक ओपनली एक चीज के बारे में बात हो रही है. आई थिंक बुशापा कि इस चीज ऐसी चीजें ड्रामे बननी चाहिए बिकॉज ही वॉज ऑन एचआईवी एंड रियली आई थिंक बहुत ही आंखें. शहरों में तो बहुत ज्यादा बातें होती है लेकिन जो विलेज में भी हो रहा है स्लोली स्लोली, लेकिन आई थिंक जब ऐसे ड्रामे बनना स्टार्ट होंगे तो आई थिंक एजुकेशन आती है इस चीज में, सीखने को सुनने को लाइक इन्फॉर्मेशन मिलती है. और प्लीज आई वॉन्ट यू टू से समथिंग रिगार्डिंग बेदर्दी जो आपने ए आर वाई पे किया था, तो प्लीज आप कुछ कहना चाहेंगे उसके बारे में.
जी अच्छी बात है ना कि लोगों में अवेयरनेस भी हो और फिर मैसेज भी ऐसा हो जो वक्त की जरूरत है.
जी जी.
मैं तो समझती हूँ हमारे यहाँ एक और बहुत बड़ा इशू है जिसके ऊपर बात नहीं की जा रही, क्योंकि हमारे कुछ मजहबी लोगों की डर से नहीं की जा रही, या कोई ऐसा एक बंच ऑफ पीपल है जो दे डोंट लेट अस टॉक अबाउट दिस. हमारी आबादी है वो बहुत बढ़ रही है, उसके ऊपर काम नहीं किया जा रहा, उसको रोक उसकी प्रमोशन को रोक दिया गया है फैमिली प्लानिंग की. और ये कहा जा रहा है कि जी अल्लाह ताला तो रिस्क देते हैं, पत्थर मेरी कीड़े को देते हैं, ये इसमें कोई शक नहीं.
जी, ऑफकोर्स.
लेकिन अल्लाह ताला ने अक्ल भी दी है इंसान को, और अपने मुल्क के हालात देखें कि हमारे पास अगर 8 रोटियां हैं और हमारे पास खाने वाले 200 है तो हमारा क्या हशर होगा. तो ये चीजें हैं. लेकिन मैं इस पर थोड़ा बहुत कहीं किसी शो में बोलती भी हूँ तो फायदा कुछ नहीं, क्योंकि वो तो सारे उनने हमारे प्रमोशन भी हटा दिए हैं. पता नहीं क्या पॉलिसी है कि बच्चे दो ही अच्छे होते थे, एक बोर्ड होता था काफी साल पहले, और मतलब जो भी प्रिकॉशंस लेने की चीजें बताई जाती थी कि भाई आप यूं करें और यूं ना करें, या आप फला जगह इलाज करें, वक्फा जरूरी है, ऐसी बातें सुनी है ना.
अब कोई बात अब नहीं होता, नहीं करते.
सबसे ज्यादा बड़ा मसला है हमारे पास पॉपुलेशन का.
ऑफकोर्स ऑफकोर्स.
और इसके ऊपर बात नहीं कर पा रहे हम.
तो बुशापा, डू यू थिंक पाकिस्तान शुड मेक सम काइंड ऑफ अ ड्रामा लाइक दैट और दे वोंट अलाउ?
नहीं, एक ड्रामा ये बना था बहुत पहले, उसमें दिखाया था कि एक औरत जो है वो इतनी बेचारी बुरे वसाइल में, ड्रामे में बच्चे उसके इतने ज्यादा होते हैं कि वो अभी भी शायद एक दिन मैंने कोई थोड़ा बहुत देखा था, लेकिन इसकी वो बहुत कम इफेक्ट होता है उस तरह.
जी.
अगर आप उसकी टेलीविजन पे कैंपेन टाइप करें, आप हर जगह पे लिख के लगाएं, आप बिलबोर्ड लगाएं, आप लोगों को वर्बलिटी बताएं रेडियो पे, इट्स एन इमरजेंसी. आई थिंक
इट इज. आई क्वाइट एग्री विद यू बुशरापा ऑन दिस वन.
लेकिन क्या करें
जी.
मैं किसी शो में बैठी थी रमजान में और मैंने ऐसे ही बात की कि देखिए बहुत सारे इश्यूज हैं हमारे यहाँ, एजुकेशन है, फलाना है, ये है, हेल्थ है, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी इमरजेंसी हमारे पास पॉपुलेशन की, तो एक मौलाना साहब है हमारे लिए बड़े रिस्पेक्टेबल है, उनका मैं नाम नहीं ले रही, तो उन्होंने फौरन कहा कि आबादी कम ना कीजिए, मोमिनीन को बढ़ाइए और अपने वसाइल बढ़ाइए और करप्शन से पाक कीजिए। अब वो एक और बहस में चले गए तो मैं उनसे बहस नहीं करना चाहती थी, लेकिन एक लॉजिकल बात मैं करती हूँ, जो कि अल्लाह ताला ने इंसान को अकल दी है तो वो हवाई जहाज पर रहा है। अल्लाह ताला ने इंसान को अकल दी है, उसने ये दिमाग दिया है, उसने ये एबिलिटी दी है, तो इंसान खला में चला गया है ना, तो अल्लाह ताला ही है जो सब चीजें बता रहे हैं, और अल्लाह ताला ने ही साइंस बनाई है, अल्लाह ताला ने ही साइंस के सारे जो हमें फायदे हुए। तो मैं ये तो इस तरह की चीजें, लेकिन मेरे दिल को बहुत इस बात का कि ये आबादी ज्यादा होने वाली चीज पे हम काम नहीं कर पा रहे ड्यू टू सर्टन पीपल्स ओन माइंडसेट। एनीवे, तो बेदर्दी में बस एड्स के ऊपर बात थी और इस तरह से था, वो अच्छा हुआ कि मैसेज तो चला गया।
I was super happy. I don't know about anyone else, Appa, but khuda kasam, jab wo drama dekha na, main itna khush hua. Main kaha, yes, finally someone is actually talking about this openly. And I think aisi cheezon pe openly baat karni chahiye. Isliye to media hai. Chalo, theek hai, har type ke audience hoti hai, dekhne wali, sunne wali, kuch agree karte hain, kuch disagree karte hain. Lekin jo mere generation ke hai, I think especially villages mein, with due respect, because perhaps इतनी नहीं होती, और एजुकेशन, आई ऑलवेज सेज के इवन कम्युनिकेट करना भी किसी के साथ एजुकेशन का बहुत बड़ा हाथ होता है। जब पढ़ाई नहीं होगी तो हम मसले कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और आई थिंक ड्रामा एक ऐसी चीज है जो सब इंजॉय करते हैं, और जब मैंने बेदर्दी देखा आपा, आई एम नॉट जोकिंग, मैं इतना खुश हुआ, मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह कि ये कोई तो बंदा बात कर रहा है, अवेयरनेस आ रही है इस चीज में कि यू नो देयर सर्टेन थिंग्स दैट वी शुडंट बी डूइंग, देयर सर्टेन थिंग्स दैट वी शुड बी एजुकेटिंग आवर किड्स कि दिस इज इट एंड दिस इज हाउ इट शुड बी।
आई हैव अ क्वेश्चन अबाउट द इंडस्ट्री एक्चुअली, सो फ्रॉम द इंडस्ट्री, लेट्स से द पास्ट इंडस्ट्री एंड करंट डे इंडस्ट्री, व्हाट डू यू थिंक द डिफरेंसेस आर, एंड इज इट इंप्रूविंग थिंग्स, इज इट नॉट इंप्रूविंग थिंग्स?
As far as my career is concerned, we actually started in that time when it was like something very different from this right now. तो ये कि हमारे यहाँ कुछ उस वक्त वैल्यू सिस्टम और भी था, हमारे यहाँ मुंह थी, मैं उसको बुरा नहीं कहती हूँ, खुदा ना खासा हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, दे वर्क वेरी हार्ड, वो हमसे ज्यादा इस वक्त उनका एक्सपोजर है, दे रिस्पेक्ट अस अ लॉट। बट मुझे वैल्यू सिस्टम जो घर का होता था वो मुझे अब ज्यादा कम आता है, हालांकि अच्छे घरों के बच्चे भी हैं, एजुकेटेड भी ज्यादा हैं, कई लोग तो बच्चे तो बाहर से पढ़ के आए हुए, हमने तो क्या कोई टेक्निकल पढ़ाई भी नहीं की हुई, हम तो नॉर्मल से कॉलेजेस से बीए करके निकल गए थे हम लोग उस जमाने में, शादियां वादियां हो गई थी, फिर बच्चे हो गए थे, फिर हमारी फैमिली लाइफ थी और ये काम था। आपके बच्चों के पास फ्रीडम ज्यादा है और एक्सपोजर भी ज्यादा है और काम भी ज्यादा है और उसके पैसे भी ज्यादा है, सब कुछ ज्यादा है, सब कुछ ज्यादा है, उसी की वजह से बहुत सी चीजें और भी ज्यादा है, मतलब डिफरेंट चीजें जो ज्यादा नहीं होनी चाहिए, उसमें उनका अपना बड़ा नुकसान हो रहा है, उनका टाइम भी वेस्ट हो रहा है, उनके लिए मुश्किलें भी ज्यादा आ रही है, मुश्किलें तो सभी तरह की होती है लेकिन उनकी मुश्किलों की कुछ और सूरत है। दूसरे वैल्यू सिस्टम ना होने से मैं फ्रेंकली कहती हूँ, मतलब सिगरेट पीना एक अपना पर्सनल इशू है, कोई पिए या ना पिए, हमारे वक्त में तो है वह सिगरेट का नाम भी लेना, हम लोगों में तो कोई खानदान में दूर दूर तक कोई सिगरेट पीने वाला ही नहीं था। मुझे याद है मेरी दूर की कोई नानी की कोई रिश्तेदार थी, उनका पता नहीं क्या इशू था, वो छुपके से बाथरूम में एक सिगरेट पीती थी, पता नहीं क्यों हमें और हमारे खानदान में पता नहीं उसके बाथरूम से सिगरेट का धुआं क्यों निकल रहा है। एनीवे, वहां पता कोई टेक्निकल प्रॉब्लम था, रिलैक्स करने के लिए पता नहीं वहां छुपके पीती थी या छुपके पीने के लिए पीती थी, आई डोंट नो। अब ये कि बच्चे आराम से स्मोकिंग भी कर रहे हैं और चीजें, मैं नहीं कहना चाहती सारे नहीं, मतलब कुछ बच्चे फिर आराम से आधी रात को फिर रहे होते हैं, मैं हमें तो चुपके 5-6 बजे के बाद घर से निकलने की इजाजत नहीं थी, तो मैं तो अभी तक बड़ी हैरान होती हूँ। अच्छा, मेरी अपनी दोनों बेटियां हैं, मेरी दोनों बेटियां मैरिड है, वो भी इंडस वैली स्कूल से पढ़ी हुई है, वो भी बड़ी कोई इसी किस्म के क्राउड में मतलब पढ़ती नहीं, लेकिन अल्लाह का लाख लाख ही शुक्र है, मैं तारीफ नहीं करती हूँ, मुझे मेरी एक दोस्त कहती है तुम तो अपने बच्चों की तारीफ करती नहीं हो, हर तुम कहती हो आया बड़ी वाली तो बड़ी कुंवर है, आया छोटी वाली तो कुछ करती नहीं, तो उसने तो नौकरी दे रखे हुए तो हिलकर नहीं देती, लेकिन ये अपनी जगह है सब चीजें, मगर मेरी बच्चों का शुक्र है ये नहीं है कि आधी रात को 4 बजे निकल गए और फिर दिन भर पड़े सोते रहे और अब तो खैर उनके बच्चे उसके पहले भी नहीं था, तो मुझे लगता है डिसिप्लिन की कमी है जिंदगी में आजकल के बच्चों की, डिसिप्लिन के वो फ्रीडम इतनी ज्यादा है
जी जी।
वो अपने आप को किसी किस्म के कोई सांचे में उनको बंद करना नहीं आता कि ये है टाइमिंग। अब मैं आज उसकी पौनी बार हड़बड़ा के, क्योंकि मेरी बड़ी छोटी ने आना था न्यूयॉर्क से
जी जी।
और वो मैंने मतलब है तो एक दो ब्लॉक छोड़ के, मतलब मैं कंपाउंड में रहती हूँ जो कि दुबई की तरफ डिपार्टमेंट से, तो वो यही रहती तो मुझे पता था तसल्ली से वो आ गया, उसका मियाँ ले आया होगा, ऊपर मुझे बेचैनी लगी थी तो मुझे सोते सोते कुछ 4:30 ही बज गए, तो मैं एकदम से उठी हुई, मैंने कहा नहीं तो देर ना हो गई हो, मतलब मैं पसंद नहीं करती कि मैं दोपहर के 2 बजे तक सोऊं, मुझे अच्छा नहीं लगता। आई डोंट नो,
सो यू आर अर्ली मॉर्निंग पर्सन बुशराफा लाइक मी।
नहीं एक्चुअली आप लोगों की तो लाइफ स्टाइल ऐसी है कि आप लोग दोपहर के 2 बजे सोना अफोर्ड ही नहीं कर सकते, वहाँ की जिंदगी ऐसी है,
यहाँ पे सब कुछ टाइम पे।
लेकिन ये कि हमारे यहाँ जैसे कई बच्चे हैं जो शूटिंग पे लोग गाड़ी नीचे खड़ी है पिक्चर लेने को, तो उनका फोन ही बंद है, वो सो रहे हैं, वो सुबह सोए। अरे भाई जब आपकी सुबह शूटिंग है 10 to 10 हमारा टाइम है मोस्टली, चलो 11 बजे भी हो तो आप मेकअप करके, आप जब सेट पे पहुंच के मेकअप होता है, मेकअप के बाद आप सेट के ऊपर कैमरा रोल होता है, तो उस पर कम से कम 12:30 हो जाए तो भी गुजारा है। अगर आप पहुंचेंगे 2 बजे और सेट पे ड्रामा ही आपका 4 बजे रोल होगा कैमरा, तो आपके जो फाइनेंसर है प्रोड्यूसर वो तो मर गए ना,
ऑफ कोर्स
उनका तो वो दिन है।
लेकिन तो बुशराफा आई थिंक जब आप किसी प्रोजेक्ट को साइन करते हैं और हाँ करते हैं, आई थिंक यू शुड बी वेरी लॉयल एंड वेरी टाइम पंक्चुअल आपको होना चाहिए, जो आपने कहा जो अग्री किया उसको निभाना चाहिए।
अभी भी लोग कहते हैं बहरोज हो, मैं हूँ या रुबीना अशरफ हूँ या समीना है, तो ये जो टीवी के लोग है ना
जी जी,
हमसे लोग घबराते नहीं है कि इनका फोन बंद होगा तो हमारा क्या होगा
जी जी,
अरे ये तो अपने देर में आएंगे तो फिर आके फिर कहेंगे ठहर जो जरा मैं रेस्ट कर रहा हूँ, मेरा मूड नहीं है, मैं ठहर के बताता हूँ, या मैं सुबह साइड में पढ़ के सो दूँ, क्योंकि मैं सुबह तक पार्टी कर रही थी, भाई मेरी जब शूटिंग है, आई एम पेड फॉर दिस जॉब टुडे, सो आई हाउ कुड आई गो फॉर पार्टी लास्ट नाइट,
ऑफ कोर्स
आई कैन अफोर्ड टू कम बाय 5 AM। ये तो मैं आज इस तरह सोई हूँ, और मेरी आजकल मैं शूटिंग पे नहीं जा रही हूँ, मैं आई एम राइटिंग अ सीरियल, सो मैं उठ के बैठ जाती हूँ।
तो ये कब आ रहा है आपा, अभी आपने ये बोल दिया,
तो इसके समझे 4-5 एपिसोड रहते हैं, फिर शूट होगा, आई थिंक यू विल प्रोबेबली You will be watching it in February. में I'm on air.
कौन से चैनल पे ये भी बता दे?
हम पे
I will be looking forward to it.
दो ढाई साल में एक ड्रामा लिखती हूँ, बस टाइम कम मिलता है, अभी भी बड़ी मुश्किल से, साथ में दिलारे शब्द की शूटिंग चल रही थी, आजकल जो चल रहा है हम टीवी पे
जी, मैं देख रहा हूँ उस ड्रामे को, इट्स ब्यूटीफुल
जी,
मैं बहुत खूबसूरत ड्रामा है, मैं देख रहा हूँ अभी। और
कैन यू टेल अस योर इंस्पिरेशन फॉर दिस ड्रामा सीरियल यू आर राइटिंग?
यस, जो आप लिख रही हैं अभी।
इंस्पिरेशंस आर सो मेनी अराउंड मी, सो मेनी लॉट ऑफ स्टोरीज आई हैव इन माय लाइफ, बट एक्चुअली होता क्या है कि आप 2-3 चीजें देखते हैं तो उसको आप कनेक्ट करके, एक उसकी निटिंग करके, उसको एक सीरियल में 2-3 ट्रैक्स बना के डालते हैं और इनकी इंटरकनेक्टिंग आप करते हैं, सो सब कुछ मेरे आसपास हो रहा है, मेरे पास क्या आपके पास भी हो रहा है, बट अभी एक इसको लिखना कैसे है और एक डिफरेंट क्राफ्ट, सो यू नीड टू लर्न दैट, और क्योंकि इतने सालों में थोड़ा बहुत जो भी काम किया है लोगों का अच्छा लिखा हुआ ड्रामा, एक्ट भी किया है और मैं भी लिख रही हूँ, दिस इज माई 12th सीरियल एक्चुअली, 12वां सीरियल है, सो बीच में 55-70 के करीब में सिंगल प्लेस भी है, सो मैं लिखती हूँ कभी कभी, थोड़ा सा राइटर अलाइव लिखती हूँ, वो एक फैमिली में जो जीन्स में है ना, हालांकि मेरे फादर तो बड़े इंटरेस्टिंग थे, वो हम तो ड्रामे से मिलते हैं, मेरी पुत्री की भी 8 किताबें हैं, मेरी बड़ी बहन की 8-9 किताबें हैं, फिर अब्बा की किताबें हैं, अब्बा सारे अखबारों में लिखते रहे जिंदगी भर, तो वो थोड़ा सा जो एक हल्का सा एलिमेंट है वो 2 साल में तंग करता है कि लिखो कुछ।
I am sure it will be amazing, I'm sure.
अच्छा हो, बस ये इस तरह का नहीं होगा जिसमें बिची सास होती है, लड़की को मार रही है, आई डोंट वॉन्ट टू राइट दैट, मुझे नहीं चाहिए वो, तो मैं करती तो हूँ कभी कभी, वो बेदर्दी वाली औरत भी मुझे करनी पड़ी बिकॉज ऑफ द इशू, मैं आई डोंट वॉन्ट टू शो नेगेटिविटी दूसरे को, और बहुत ज्यादा हम लोग कहना चाहिए कि हमारी जो नेशन है ना वो पेन ओरिएंटेड है, हमें थप्पड़ पड़ने में मजा आता है, हमें पहले ऐसे नहीं होता था, ड्रामा एक खूबसूरत बात कहने का अंदाज है, अगली बात को खूबसूरती से बयान करने का नाम है,
ऑफ कोर्स
और इसी को एक रेलिवेंस के साथ, एक रियलिटी के साथ कन्विंसिंगली लोगों को पहुंचाने का नाम है. अब तो तगाती बोतल हाथ में लेके ड्रामा लिखा, हम लोग सब मजाक कर रहे होते हैं आपस में ना, राइटर्स बैठे थे, तो लोगों ने तगाती बोतल एक हाथ में पकड़ी हुई और अब लिखो, तो इसके इससे अलावा तो अब हम लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो कुछ हमने अब लोगों के साथ कर दिया है ना लास्ट 10 ईयर्स के, अब लोगों को बहुत हाई ड्रामा चाहिए जिसमें कि लड़की को धक्का मार के बाहर निकाल दें, उसको थप्पड़ मारें, उसके मुंह पे तेजाब फेंक दें, उसकी टांग तोड़ दें, उसको लकड़ी से मारें, तो ड्रामा कहते हैं ओए होए होए होए, तो बड़ी रेटिंग है.
सो आपको क्या लगता है आपा कि आज का रेटिंग रेटिंग चाहिए या गुड स्टोरी चाहिए?
एक्चुअली तो चाहिए सब कुछ है उनको, बिजनेस चाहिए, और बिजनेस चैनल्स कहते हैं जी ये जरा एक तो 30-40 एपिसोड हो तो बड़े खुश होते हैं कि उनका उसमें रिकवरी ज्यादा होती है, और रेटिंग भी उनको आती है जब कोई लड़की घर से भाग जाती है, या कोई किसी के भाई के साथ लग जाती है, या अपने देवर के साथ चली जाती है, या ऐसी चीजें होती है. दिस इज रियलिटी, मगर ये ड्रामा जो है
इट्स टू मच,
उसकी शक्ल बदल गई है, विच इज आई डोंट लाइक दैट. और मेरी बड़ी छोटी बहन है जो उसका बड़ा अच्छा काम करी, अस्मा, माशाल्लाह.
आई लव अस्मा अपा, ओ माई गॉड, शी इज वन ऑफ माई फेवरेट्स.
Because you're such, as we all say, a legendary actress, what would be your advice to people who want to be an actor or who want to go into the writing industry or want to go into the acting industry?
आप उनको क्या एडवाइस देंगी?
Actually, तो कोई भी काम हो, you have to be determined and you have to be honest with your work, whatever you do.
Yes.
लेकिन बात यह है कि अब ये बातें अपनी जगह रह गई है. राइटर्स को इतनी डिक्टेशन मिलती है चैनल की तरफ से कि वो बेचारा जो सोच के बैठा होता है ना, मैं मतलब अगर सोच के बैठी हूँ कि मैं अपने जो मेरे देखने वाले हैं उनको मैं एक हल्के से मोर के पर से उनको छू लूं, मेरा दिल ये चाहता है, मैं ऐसी बात करूं जैसे किसी ने आपको छू लिया मेरे साथ, तो मुझे फिर ये याद दिलाना पड़ता है कि नहीं 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 नहीं, मुझे पंच मारना है, मुझे मैं वो नहीं कर रही हूँ फिर भी, लेकिन मेरे ड्रामे में बड़े कट्स हैं, बड़े कर्व्स हैं, बड़ी चीजें हैं जो अटेंशन लेंगी इंशाल्लाह. मेरा पिछला ड्रामा पाकीज़ा जो है वो यूके में हाईली पता नहीं कितने सालों में मोस्ट हाईली रेटेड प्ले था पाकीज़ा,
एंड इट्स कम बैक अगेन. मैंने लास्ट यस्टरडे फर्स्ट एपिसोड वापस ऑन एयर हुई है हम टीवी पे.
अच्छा, वो यूके का जो बीम है ना उस पे चलता होगा, हमें पता नहीं है, तो उधर से मुझे किसी ने भेजा था एक अखबार का कटिंग, बिकॉज वो एक प्रोफेशनल औरत की कहानी थी और वहां पे सारी औरतें काम करती हैं, तो उनके साथ जो कुछ भी प्रॉब्लम्स है वो रिलेट कर रही होंगी, तो प्रॉबेबली वो वहां पे क्लिक हुआ. लेकिन जहां तक मुझे पता है वो जो रेटिंग वाला सिलसिला, मैं अस्मा की बात करती थी कि उसने प्ले में काम किया था अभी, जिसका नाम था बेटी, उसमें वो बेटी होने पर झगड़ा हो रहा था. अब ये जमाना है भला ऐसी बातें करने का, वो भी कहने लगी बाजी मैं फिर क्या करूं, लेकिन वो कोई ड्रामा हिट हुआ है. मैंने कहा हाय अस्मा को हम मानो कहते, मैंने कहा मान, इतना घटिया ड्रामा इतना हिट चला गया, मैं क्या बताऊं.
बट आई थिंक बिकॉज माय पॉइंट ऑफ व्यू, व्हेन आई एक्चुअली आपा, मैं सच्ची बताता हूँ, मैंने रिएक्शन मेरा क्या था, मुझे नहीं था पता कि आसमा आपा इसमें. मैंने जब ड्रामा देखा ना तो उनकी दादी बनी हुई थी, मैंने कहा या अल्लाह ये आवाज पहचानी पहचानी लग रही है, ये है कौन? और जब मैंने देखा मैंने कहा ओ माई गॉड ये तो आसमा आपा है. But she did superb, like हिम्मत चाहिए होती है ऐसे एक्टिंग करने, और ऐसा पूरा गेटअप करना बहुत मुश्किल होता है, ऐसे लाइक बाल खुले हुए और ऐसे, लाइक आई डिडंट इवन रिकॉग्नाइज हर, बट आई हैव टू से इट वॉज 10 out of 10. आई एम बीइंग ऑनेस्ट, जिस तरीके से एक्सप्रेशंस, गुस्सा जैसे वो चाहिए था सब कुछ, एंड आई बी ऑनेस्ट आई लव्ड इट, आई एब्सोल्युटली लव्ड इट.
नो यही तो बात है, तो भी वो हालांकि मुझसे भी छोटी है बहुत, जावेद बेचारी जावेद की माँ बनी हुई थी, कह ली है, मेरे जावेद भाई को इतनी गालियां दी है, तो बेचारे हंस रहे थे आगे से ना, जावेद तो सीनियर. एनीवे तो ये है कि बस ठीक है, हम अपने तरीके से काम करते हैं. मैं चेंज नहीं कर सकती अपने आप को कि मैं पेट्रोल डाल के आग लगा दो और ये वाला ड्रामा लिखो, आई डोंट नीड टू डू दिस, बिकॉज मुझे देखना होता है अपने पैशन के लिए, अपने मजे के. So I want to entertain people and I will, inshallah, mera play bahut
inshallah.
Lekin main ye nahi kar sakti ki beti paida kyun ki aur jadoo toona karwa dun, aur I hate this genre, I hate this genre.
Busha aap, ye quick questions hai, jo bhi aapke dimag mein aaye aapne bas bol dena hai. Pehla ye cheez sun ke bas 10-12 questions hai. Aapka favorite holiday destination?
Mera favorite
holiday destination kahan hai, kaun sa mulk?
हॉलीडे डेस्टिनेशन तो अब इतनी दुनिया देख ली है कि एक फिक्स नहीं कर सकती. मैं बहुत विजिट करती हूँ टोरंटो को और मैं कनाडा बहुत जाती हूँ क्योंकि मेरी एक बड़ी बेटी भी है वहाँ. पहले छोटी यहाँ थी तो यूके बहुत आती थी, साल में 5-5 चक्कर लगाती थी. लेकिन मेरा फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन इज पाकिस्तान ऑलवेज.
पाकिस्तान जिंदाबाद.
होम इज ऑलवेज
ऑफ कोर्स. और
रात होके भाग जाती हूँ. फिर मैं यूके गई थी तो मैं अभी लास्ट गई थी अक्टूबर में, यूरोप वोरप सब गई थी. बस मैंने कहा भागो घर भागो. अभी भी मैं नहीं जा पा रही काम इतना यहाँ पे. मेरा हालांकि परमानेंट रेजिडेंट हूँ वहाँ पे लेकिन मैं बहुत लेट हो गई हूँ. मेरे डेज पूरे नहीं हो रहे, मुझे रहना पड़ेगा.
Quick question. How do you balance your kind of working life and home life?
Yes. कैसे बैलेंस करती हैं आप? ये बहुत मुश्किल है वैसे. काम भी करना, घर भी संभालना, यू नो इट्स. अगर आपका करियर देखा जाए तो आपने शादी के बाद ऑब्वियसली यू हैड अ बेबीज, फिर उसके बाद आपने काम भी करना, बच्चों को भी संभालना. ये कैसे किया आपने? लाइक कुछ लाइक टिप्स दे प्लीज.
Look after the girls because I was in Karachi, तो यहाँ पे ना तो उनकी दधियाल थी ना ननिहाल थी. I had only good friends, but मैं अपनी बेटियों को कहीं छोड़ नहीं सकती थी कि भाई आप यहाँ बैठो रह लो दो चार दिन तो मैं जरा ब्रेक ले लू. ऐसा होता है ना सिर्फ रिश्तेदारों साथ. तो वो मैं बच्चों को I drove them to school 14 years myself because I never kept any male servant because लड़कियां थी. And I never kept a male cook ever. लड़कियों को रखती थी, छोटी छोटी मेड्स को रखती थी हेल्प के लिए. सो मैं खाना भी बनाती थी, मैं ड्राइविंग भी करती थी, मैं सारे काम भी करती थी. और फिर खैर से उनकी शादियां हो गई, अपने घर चली गई, वहां जा जाके उनके बच्चे भी पैदा करवाए. तो एक के पास लंदन में रही 2 महीने, उसका एक बेबी हुआ वहां पे. फिर अब बड़ी के पास जाती हूँ टोरंटो. सो एक पेस बन जाता है. अब तो माशाल्लाह दोनों की शादियों को भी 15-12 साल हो गए हैं तो अल्लाह के फजल से अपनी जिंदगी में है. सो आई हैव लॉट ऑफ टाइम नाउ. मेरे एक दिन मेरे भाई कह रहा था कि आपको क्या जरूरत है इतनी खुआरी की, अब आराम करें, आपने बच्चों को सब सेटल कर दिया है ना आपको इतना. मैंने कहा मैं आराम करूं क्या? मैं छत पे बैठ मैं तब देखूं आसमान की तरफ, मैं टीवी देखती रहूं और मैं क्या बकवास करूं? मेरे पास इतना कुछ है कहने को करने को. अभी मेरे पास कुछ म्यूजिक के आइडियाज हैं. अभी हमने जो लास्ट बनाया था गवांडने वाला अपना रैप सॉन्ग बनाया था,
वाज अमेजिंग.
मेरी बड़ी बहन ने लिखा था. तो हम तो मेरे पास आई हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू डू.
अब अल्लाह
मैं क्यों बैठ जाऊं रिटायर होके? दिस इज नथिंग टू आप क्रिएटिव आपका जो प्रोसेस है वो रिटायर नहीं करता आपको. और कुछ नहीं तो मैं लिखने बैठ जाऊंगी. मुझे अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखनी है इंशाल्लाह. आई हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू डू एंड अल्लाह का फजल है कि काम भी बहुत है और ऊपर से दिमाग भी काफी खराब है.
नहीं 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 आप अल्लाह सुभान व तआला आपको सेहत दुस्ती दे और आप हमेशा हमको ऐसे ही एंटरटेन करती रहे, ये मेरी हमेशा दिल से दुआ होगी. आपने खाने की बात की थी तो आपका फेवरेट फूड कौन सा है?
मुझे सबसे फेवरेट लगता है दाल चावल और भिंडी.
यस
यस.
आपा ये वोट हमारे लिए हो गया फिर.
और भिंडी अगर मैं और
भिंडी
इतने मुझे
सारी
सब्जियों. अब एवरी डे माई कुक आस्क मी क्या बनाऊ, गर्मी इतनी, मैं कहती हूँ आई बेटे दाल चावल बना. दाल चावल बना ले तो बाकी चीजें भी खा लेती हूँ. मैं कड़ी भी खाती हूँ, हर चीज खाती हूँ, आई लाइक इट. बस मैं ज्यादा दिन पिज्जा नहीं खा सकती, कभी साल में एक दो दफा खाती हूँ. मैं इतने बर्गर भी नहीं खा सकती.
एक और क्वेश्चन है. एक ऐसा अवार्ड जो आपको लगता था कि वो आपको मिलना चाहिए बट somebody else got it, but like you worked so hard in that drama, and आपको लगता आपके जो करियर बिगिनिंग था उस वक्त तो
एक्चुअली अल्लाह के फजल से मुझे इतने बड़े अवार्ड इतनी जल्दी इतने ज्यादा मिले
अल्हम्दुलिल्लाह.
कभी ऐसी फीलिंग नहीं हुई. और एक आध दफा ऐसा हुआ भी तो इतना मजाक बना, जिस बेचारे को मिला उसको लोगों ने इतना मजाक बनाया, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं करता. नेम द गर्ल आपको शायद याद भी नहीं होंगी. वो कोई 8-9 साल पहले लक्ष्मी में और सानिया सईद और सवेरा नदीम फाइन एक्ट्रेसेस और एक और थी जिनका मैं नाम नहीं ले रही. वो मॉडल थी प्यारी सी और उन्होंने एक फिल्म में काम किया था. तो हमें क्या पता, हमारे तो 8-10 साल पहले ना तो इंटरनेट पे हमारे दोस्त जाते थे और ना कोई हमें पता था कि कैसे करना. उनके कोई दोस्त थे जिन्होंने उनको इंटरनेट पे सबसे सुपर हीरोइन बना दिया था. when she got the award, so everyone was like, उन्होंने कहा जी ये इंटरनेट से आई है इसकी नंबर ऑफ जो है होता है सपोर्ट. हमने कहा चलो, हमने तो पता ही नहीं इंटरनेट पे कैसे बैठते हैं, उस जमाने तो बिल्कुल ही पैदल थे. तो वो ऐसा था, लेकिन मुझे कोई, मेरी तो हंसी आ गई थी, मैं नहीं गुस्सा करती बिल्कुल.
आपका लास्ट क्वेश्चन है, टाइम भी बहुत कम रह गया, बस लास्ट क्वेश्चन. जब आप इंडस्ट्री में आई थी, सच्ची सच्ची बताइएगा सबको सामने, आपका सेलिब्रिटी क्रश कौन था?
नहीं एक्चुअली जब मैं इंडस्ट्री आई थी तब तो मैं 9 साल की थी, ठीक है. मैं फ्रॉक पहन के आई थी, जुराबे पहन, कौन सा मेरा क्रश था. उसके बाद जब मुझे होश आई, यानी कि 15 साल में मुझे होश आ गई थी ना, आई टू लव राजेश खन्ना. और मुझे अमर प्रेम जमाने की फिल्म थी ना, तो उनकी किताब, उनकी तस्वीर किताब में छपाई हुई थी बेचारे की, हालांकि बड़ी हुई तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए. मैंने कहा वो कोई एक्टर थे बेचारे, वो तो हीरो थे सिर्फ. लेकिन ओवरऑल इंडस्ट्री में आसपास जो लोग थे, आसपास क्या थे, मैं तो ड्रामा में अलाउड ही नहीं थी, तो आई यूज टू, मुझे शकील बहुत प्यारे लगते थे, बड़े हैंडसम थे,
हैड एन अमेजिंग आईज, ब्यूटीफुल कलर, ब्यूटीफुल.
बाद में तो हमारे सहेले बन गए, हमारे अपने दिल के आंगन टेढ़ा में हमने काम किया, तो मैं हमेशा उनको छेड़ती थी, हाय अल्लाह आप तो मेरे हीरो थे, अल्लाह अब जाके बुढ़ापे में आपने मेरे साथ काम किया है. तो हंसते थे, लेकिन ऐसा कोई कह नहीं सकती, क्योंकि अपने जो दोस्त होते हैं ना, जैसे जावेद है, जमीर है, बहरोज, अब ये कोई, ये कोई मैं कहती हूँ तुम लोगों को हमने मर थोड़ी समझा, तुम तो हमारे सहेले हो.
We have a message saying from Saima Ishtiak in Multan, Pakistan, saying, love you, Bushra Apa. So do you want to, before we have to wrap up, do you want to leave a message to all your fans?
Aapke jitne bhi sunne wale hain, pyar karne wale hain, sabko karne wale hain, koi bhi pyar se message de, please.
Yeah, I can just say thank you to all of them. They're watching me since so long, and thanks for their patience and their love and their prayers and whatever. But sirf itna zarur kahiyega ki apne liye aur dusron ke liye aasaniyan paida kijiyega, taki jitni aasaniyan Allah ne aapko di hai aap logon mein spread kar sake aur logon ko bhi acha lage.
Of course, that's so beautiful. Aur aapa end pe ek chhota sa message jo main dena chahta hu aapko, please 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 give pyar bhara salam to Asma Apa and tell her that we all love her. Please.
And please pray for her because she's a cancer survivor.
Yes, or she is. Yes.
Yeah, mashallah. Wow. She's such a brave woman.
She is very brave.
Mashallah. Yeah. वो ऐसे खड़ी हुई थी जैसे कोई मसला ही नहीं है, उन्हें सारी तकलीफ से गुजर के अगले हफ्ते वो अपने किसी प्ले की शूटिंग पे चली गई थी. She's so brave. उसको याद ही नहीं रखती कि उसको कौन सी. So you all pray for her life Inshallah. And her health and Inshallah. Her safety. Inshallah. Thank you for it.
And thank you so much, Apa. मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने वक्त निकाला, इतना ज्यादा आप इतनी टायर्ड हुई हुई हैं, लेकिन फिर भी इस दुआ के साथ कि अल्लाह सुभान व तआला हमेशा आपको खुशियों से नवाजे, इसी तरह हंसती मुस्कुराती रहे हमारे साथ, हम सबको एंटरटेन करती रहे, और इंशाल्लाह जिंदगी रही, कभी पाकिस्तान आया तो आपके साथ मुलाकात भी होगी, और हमारी रेडियो संगम की टीम की तरफ से आपको अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग विद अस.
Thank you very much. And for the happy.
Assalamu alaikum.
Thank you very much, Bushra.
Allah Hafiz.
Okay, that was Bushra Ansari.